रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। हिंदी साहित्य के सबसे पुराने साप्ताहिक कार्यक्रम बोलती कहानियां में आज हम लेकर आए हैं विभा रानी लिखित मार्मिक कहानी दा से देह दर्द और दिल, शिवना प्रकाशन के सौजन्य से। संपादन विकेश खरे का और वाचन रितेश खरे द्वारा। तो आइए सुनते हैं विभा रानी की कहानी दा से देह दर्द और दिल। संपादकीय चेतावनी, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि ये प्रस्तुति केवल वयस्क श्रोताओं के लिए अनुमोदित है और सामान्यतः नाबालिगों के लिए अनुपयुक्त है। इस प्रस्तुति की भाषा कठोर व अशालीन हो सकती है। धन्यवाद।
सुरजी सुरूज बेला के साथ नहीं उगती है, वह संझा परात दिन रात कभी भी उग जाती है। उसके उगने की डोर सुरूज देव बाबू के हाथ में है। सुरूज देव बाबू मातबर लोग हैं, बाहुबली। समय भले 21वीं सदी में टहल्ला मारता पूरी दुनिया को अपने जाल संजाल में समेट रहा है, मगर सुरूज देव बाबू अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हिमायती हैं। दूसरे की जमीन अपनी, दूसरे की जोरू अपनी, और ये तभी मुमकिन है जब घरवाली कम अकल और बेशकल रहे। वे बोले, हमको पढ़ी लिखी घरवाली नहीं चाहिए, रामायण गीता बाँच ले, टीवी सीरियल देख ले, धोबी गोभी का हिसाब किताब रख ले, बस। गजब कि उनको सुंदर बीवी का भी आग्रह नहीं था, जबकि सुंदर कनिया की हिरिस चाहत आदमी लोग शायद बाबा आदम के जमाने से और अम्मा की कोख से ही पाले हुए आते हैं। सुरजी घर बुहारती गाती, मोरो भैया आइले अन भैया हो, मोरो भैया आइले अन भैया हो, सावन मा में ना जाइबो ननदी। किसी को नहीं पता सुरजी का घरवाला किस देश विदेश में कमा खा रहा है। बाप दो चार बार गया उसकी ससुराल, ससुर ने उसे उल्टे पांव घुरा दिया। जाइए समधी, जाइए, हमारा बेटा घूर आएगा, आपके बेटे का दुरागमन करा लेंगे। तब ईगीत नैहरे में नैहर न जाने की जिद होता है। ससुराल बसने की आस प्यास और नैहर की नेह भरी सांस गीत बन जाते हैं। ई कोनो अजगुत कथा कोनो आश्चर्य की बात तो है नहीं, मगर अजगुत हुआ, घनघोर हुआ। पहला अजगुत तो यह है कि सुरूज देव बाबू को पढ़ी लिखी घरवाली मिल गई और उस पर से कोड़ में खाज की तरह खूबसूरत भी। सुरूज देव बाबू सांप की बांबी में पड़े हाथ की तरह बिलबिलाए और आवाज मिसमिसाते हुए ऐलान कर दिया कि इसमें आजकल के छोकरों का पूरमपुर हाथ है। तनिक पढ़ने लिखने में होशियार हुए नहीं कि गांव घर से उड़न छू, यहां तक कि छौड़ियां भी, हां लड़कियां भी। कोई देसी रेलगाड़ी आबाद करते हुए तो कुछ विदेशी विमान में आकाश में उड़ते पखेड़ुओं के साथ होड़ लगाते हुए फरार हो जाती हैं। छोकरे लोग खुद पढ़ लिखकर बिलायती बीबी चाहने लगे। तब के समय में डॉक्टर इंजीनियर वकील की घरवाली सब गीता रामायण बाचकर डॉक्टराइन इंजीनियरनी वकीलाइन कहलाती इतराती फिरती। अब ये डॉक्टर इंजीनियर वकील और एमबीए सीए तो अलना फलना करने वालों की पहली शर्त होने लगी, पढ़ी लिखी लड़की। कामकाजी हो तो सोने में सुहागा। पहले तो माँ बाप बेटी को सोना, जमीन और धेनु से लाद देते थे, इज्जत भी और बखत कुबखत का सहारा भी। अब झक मारकर पढ़ाने लगे, सब ठाट धरा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बंजारा। सोना, जमीन और गाय कौन पूछे, जब लड़कियां पसीन नहीं, पसंद है नहीं। बड़ी खोजबीन के बाद भी सुरुज देव बाबू को बीए पास से कम और सिनेमा की हीरोइन से कम रूप वाली बीबी नहीं मिली। अब भले बेटा कहता फिरा कि हमको सुरसा ताड़का से कोई ऐतराज नहीं, पर माए बाप का अपना शौकर मान। भर शहर की चमचमाती जगमगाती इजोतिया चांद जैसी बहुओं के बीच अमावस कैसे ला बिठाते। बीए पास, अंग्रेजी अखबार फर्राटे से पढ़ने वाली और चंद्रमा को भी मात देने वाली गजब की सुंदर बहू पाकर भी सुरुज देव बाबू का मुंह फूला रहता। मन का क्षोभ मलाल गहराता तो सुनीता देवी के नाजुक नरम गुलाब के फूल जैसी देह पर उतर जाता। एह, होगी सुंदरी, होगी बीए फीए, मेरे लिए तो कानी उंगली के कटे नाखून बराबर भी नहीं। ऐसी गोरी बहू के तो पैर पूजने चाहिए और ई नालायक पैर से उसे धांगता है, दुखी माई एक दिन बोली तो सुरुज दे बाबू जेठ बैसाख माह के दोपहर 12 बजे का सुरुज बन ऐसा धकियाए माई को कि उनके प्रचंड ताप तले झुलसती 6 माह में ही बेसिधार गईं। पुरुष पात्र कहने को पौरुषमय होते हैं, कमजोर इतने होते हैं मन से कि पूछिए मत। बाऊजी भी अपवाद नहीं थे, पत्नी से कितना प्रेम करते थे यह तो जीवन भर किसी को दिखा नहीं। लेकिन माई के जाने के 6 माह बाद ही जब वो भी चल बसे तब उनके प्रेम के अथाह संसार का पता पूरे गांव को लगा। दोनों के जाने से खाली हो आए घर में सुनीता बहुत रोई और बाद में सुनीता देवी और मलकिनी नाम से अभिहित हो गई। सुरजी को मलकिनी पर बहुत दया आती, उसे अपनी हालत ज्यादा अच्छी लगती। नहीं आता है मर्द, नहीं आवे, वह घर घर झाड़ू बुहारी कुटिया पिसिया करती है, माल मवेशी देखती है, गाय का सानी पानी करती है, गोबर का गोईठा गोरहा पाथती बनाती है, मन मुताबिक साड़ी सिंदूर टिकली भी पहनती है, अशहर का इंदर पूजा मेला भी घूम आती है, झुलुआ भी झूलती है, चूड़ी भी खरीदती है, तमाशे भी देखती है। सीना तान के माथा उठा के ठसकती चलती सुरजी को मैया ने चेताया, इतना तान उघाड़ के मत चल, जमाना खराब है आजकल। जमाना कहिया बढ़िया था माई, बढ़िया रहता तो रावण सीता जी को हर ले जाता।
कोई तुमको ना हर ले मेरी सीता,
यह कट्टा से बोटी बोटी काट के दरकच ना देंगे उसको। सुरजी का आत्मविश्वास उसके हंसिए की तरह ही चमकता, दुहा रहे दूध के फेन जैसा दांत चमकाती सुरजी को खुद ही पता नहीं चला कि वह भी कैसे एक दिन सीता बनकर हर ली गई। सुरुज देव बाबू का कोठरी सुरजी की माई ही बुहारती पोंछती, लेकिन उस दिन जाने कैसे उसकी मत मारी गई, उसने सुरजी को भेज दिया। मलकिनी बोली,
वो तो फारिग होने गए हैं, घंटा भर से कम नहीं लगता उनको।
झाड़ू पोछा लगा के लौटी सुरजी के गाल लाल थे और सीना तनिक पेसी उभरा, एक पल चेहरे पर मुर्दनी छाती, एक पल मुस्कान। घर लौटकर अपने हाथों से दोनों गालों को सहलाया, सीने के अतिरिक्त उभार को कम किया तो हथेली नोटों से भर गई। मलकिनी घरवाली थी, सुरजी दिलवाली बन गई। रात में मलकिनी के साथ क्या होता, सांझ में सुरजी के साथ क्या होता, दोनों को मालूम था। मातबर सुरुज देव बाबू के फटे में टांग तो क्या, अपना काट कर फेंका नाखून भी लोग अड़ाना नहीं चाहते। कनफुसकी मुस्की चुस्की में बात होती रही, लोग अपने घर के बेटों, बेटे अपने बापों और माँ बहुएं अपने अपने मर्द पर हर संभव चौकसी रखने लगे। सूरजी दिन उगते से सांझ ढले तक उगती, चमकती, लचकती, मटकती। सूरजदेव बाबू समंदर में डोलते सूरज की तरह आगे पीछे होते। उस दिन ज्वार उगते सूरज पर कारे मेघ छा गए, मेघ झमा झम बरसे, सूरजी भी बरसी, मलकीनी भी। सूरजदेव बाबू काले मेघ की तरह गरजते रहे, घन बिजली जैसे चमकते रहे। सूरजी दर्द से बिलबिला रही थी। दर्द तो पहले भी होता था, जब जबरन सूरजदेव बाबू उसकी देह को अपनी मुट्ठी में भर लेते, जबरन उसकी टांगें फैलाकर उसके ऊपर हुमचने लगते, आगे पीछे ऊपर नीचे करके उसे रुई की तरह धुन देते। मगर उसमें आहलाद की एक टीस होती, प्यार भरी कसक और संस्कारी होती। धुनने का कोई बखत नहीं था, धुनिया धुनकी लेकर तैयार तो सूरजी को रुई की तरह खुद को धुनवाना ही पड़ता। धुन धनक के ऊपर आती तो मलकीनी सूनी नजरों और सूखे ओंठ से उसे देखती रहती। सूरजी को ग्लानी होती। शुरू शुरू में अंग अंग की यह पीर अच्छी लगती, मादक, और वह गा उठती, रात सैया मोती के लड़ी तोड़ दियो रे, रात सैया, रात सैया मोती के लड़ी तोड़ दियो रे, रात सैया। मरद का कोई अता पता नहीं था, पहले भी नहीं, अभी भी नहीं। अब तो शायद पता भी हो तो नहीं आएगा। कौन आंख रहते जीवित माछी निगले। माए बाबू ने उसका जैसे जिंदा श्राद्ध कर दिया। सूरजी समझ नहीं पाती कि कैसे वह इस खाई में उतरती चली गई। जवान देह की मांग, आदमी आ गया होता तो, पैसा, फूले करारे नोटों से भरा सीना, और अब तो उसका पक्का घर भी बन गया है। माए बाबू ने जो थोड़ा बहुत पढ़ाया था उसके बल पर बैंक में खाता भी खोलाई। उसे पता था कि बैंक से पैसा कोई नहीं चुरा सकता, भले उसकी देह से जवानी सूरजदेव बाबू चुराते रहे। पर अब मन ऊब गया था, अपनी कोई मर्जी ही नहीं, एक हुकुम और देह कपड़े की ओट से बाहर। उस दिन भरी मेघ से भरी दोपहर भरी सांझ लगने लगी थी। मलकीनी दुख की गगरी बनी भरी बैठी थी। 5 बरस हो गए। एक काना पूत भी गोद में रहता तो उसका मुंह देखकर सारा गम भुलाती रहती, पर पूत होए तो कहां से, सारा रस तो इस सूरजी सोखे ले रही है सूरजदेव बाबू का। सूरजी बधाती गाय की तरह चीखी। मलकीनी घबरा कर नीचे उतरी, एक हाथ जांघों के बीच और एक हाथ से छाती दबाए सूरजी दर्द से बिलबिला रही थी। जूड़ा खुल गया था, बाल बिखर गए थे, आंखों में कातरता के लाल डोरे खून की नस बनकर बाहर निकलने को बेताब हो रहे थे। मोटे मोटे आंसू उसके गोरे फूले गाल पर कोसी कमला की धार बनकर बह रहे थे। मलकीनी को देखकर वह एक बार और प्याहती गाय की तरह चीखने लगी। सूरजदेव बाबू होलिका दहन की आग की तरह लाल अंगार बने हुए थे।
हरामजादी रंडी नखरा करती है, भाग यहां से, नहीं तो अभी यह कुट्टी कुट्टी काटकर डबरा ही पोखर में फेंकवा देंगे।
मलकीनी सहारा देकर उसे ऊपर ले आई। सूरजी सिर कटी बकरी की तरह छटपटाती रही थी। मलकीनी की आंखों में सवाल ही सवाल थे, सूरजी की देह में दर्द ही दर्द था। सवालों का कोहरा थोड़ा छटा, देह का दर्द थोड़ा कमा, तो दोनों के हाथ में चाय थी, मलकीनी का कप और सूरजी का गिलास, जो केवल उसी के लिए था, जिसमें चाय पानी पीकर वह उसे एक किनारे रख देती। अछोपिन होने का यह जहर चाय पानी के संग उसे हर दिन पीना पड़ता। चाय का कप थामे मलकिनी की आंखों में प्रश्न था।
क्या हुआ?
सुरजी के सामने सब कुछ नाच उठा। सूरजदेव बाबू ने उसको अपनी ओर खींचा। उसने तनिक इतरा कर कहा,
मालिक आज नहीं।
क्यों, महावारी से है?
नहीं मालिक।
तो क्या पेट से है?
क्या मालिक, आप भी, आप तो फुकना लगाए करते हैं, हमको भी गोली खिलाते हैं।
तो मरद आ गया तुम्हारा?
वो तो लगता है कोनो जबर पाताल में सनिहा गया है।
तो कोई और मुस्टंडा चढ़ गया जी पर?
नहीं मालिक।
तो फिर? सूरजदेव बाबू की आवाज तेज तर होती गई।
मालिक आज मन नहीं है, रोज रोज वही सब, कभी हो तो छुट्टी मिले।
छुट्टी चाहिए? रंडी सूत क्या गए चार दिन तुम्हारे संग, तो अपने को मिनिस्टर कलेक्टर बूझने लगी है। छिनरो सुता लिए तो तेरी मर्जी चलने लगेगी, खुद को महारानी बूझने लगी।
गुस्से में तिलमिलाते सूरजदेव बाबू ने जूड़े से पकड़कर उसे इतनी जोर से खींचा कि गर्दन बुरी तरह मोच खा गई। बालों से पकड़कर उसे चार चक्कर घुमाने के बाद जोर से फर्श पर लापटका। फिर बेरहमी से उसकी छाती को इतनी क्रूरता से दबोचा कि उसके मुंह से किसी गर्दन रेताती खस्सी जैसी जोर की चीख निकली। सुरजी को उसी तरह पकड़े हुए सूरजदेव बाबू ने उसे ऊपर उठाया और पेट पर लात मारकर फिर नीचे गिराकर जबरन उसकी टांगे खींची और एक भरपूर लात। भय आतंक और दर्द से सुरजी फिर चीख उठी। उसकी देह उसके काबू में नहीं रही। वह बड़ी जोर से झुरझुराई तो चाय का ग्लास हाथ से छूटकर झंझनाता हुआ दूर चला गया। चाय फर्श पर फैल गई। दो घूंट भर चाय ही गई थी भीतर, बाकी तो अभी ग्लास में ही थी। ग्लास के छूटने से सामने बैठी मलकिनी पर चाय का छींटा पड़ गया। चाय उनकी साड़ी पर भी जा गिरी। सुरजी के दुख से संवेदित और सूरजदेव बाबू के पाश्विक कृत्य से मलकिनी को चक्कर और मतली आ रहे थे। वह कल्पना नहीं कर पा रही थी कि कोई इतना निर्मम भी हो सकता है, बल्कि वह कल्पना करने लगी कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ होता तो। लेकिन वह इसके आगे की कल्पना नहीं कर पाई। देह उनकी भी झुरझुराई, लेकिन वह मलकिनी थी, संभल गई। लेकिन यहां वह खुद को नहीं संभाल पाई। सुरजी की पीर के मर्म तक पहुंच रही मलकिनी की मर्म यात्रा में एक तेज झटका लगा चाय के ग्लास से। उधर ग्लास झंझनाता हुआ दूर गिरा, इधर मलकिनी झंझनाती हुई चीखी,
रंडी अछोपिन कर दी ना पूरा चौका और हमको भ्रष्ट। अब फिर चौका धोना पड़ेगा और इस बरखा बुन्नी के समय में नहाना पड़ेगा।
सुरजी बीए पास नहीं थी, मगर दुनिया देख रही थी। सूरजदेव बाबू के इस कृत्य ने एक पल में मलकिनी को इतना बदल दिया। उनकी पढ़े लिखे की भाषा को बदलकर ऐसी भ्रष्ट भाषा बोलने पर मजबूर कर दिया। सुरजी सूरजदेव बाबू के साथ सोती थी, सोने के बदले पैसे पाती थी। सूरजदेव बाबू के प्रति उसके मन में स्वार्थ था, मलकिनी के लिए भर देह आदर। मलकिनी उसे जितना भी काम अड़ाती कभी ना नहीं करती। उसे लगता शायद वह इसी तरह अपना अपराध कम कर रही है। लेकिन सुरजी सुलग उठी। देह का दर्द मन के दर्द में तब्दील हो गया। अंतस की पीर जीभ पर आ गई। जितना तेजी से ग्लास गिरा, जितनी तेजी से मलकिनी बोली, उतनी ही तेजी से सुरजी भी बमक उठी।
ए मलकिनी, हम क्या अपने से रंडी बने हैं? अछोपिन बनकर जन्मे हैं? आज हमरे गिलास का चाय गिरने से आपका चौका और उसका बुन वो आपके ऊपर छलकने से आपका देह भ्रष्ट हो गया। और रोज दिन हमारे देह में देह घुसा के अपना जीव हमारे मुंह में डाल के मालिक जब आपके पास आते हैं तब आप भ्रष्ट नहीं होती हैं?
मलकिनी की नजर झुक गई, सुरजी की उठ गई। मालिक की मार से देह की नस नस पिरा रही थी। मलकिनी की बात से मन का मांस तक सींज गया था, लेकिन अपनी ही बात से उसके तन मन की पीर पर चंदन लेपा गया। वह उठी, ग्लास उठाया, धोया, पोंछा लाकर फर्श को साफ किया, जमीन पर निहुर कर बिछ कर मलकिनी को प्रणाम किया और बोली, आप लोग बची रहती हैं क्योंकि आपके हिस्से का नरक हम ढोते हैं, हम जा रहे हैं, अब अपने हिस्से का नरक और सुरक दोनों भोगिए। लड़खड़ाती सुरजी चल दी। चलते चलते अपना ग्लास उठाकर आंचल में खोंस लिया। इसको लेकर जा रहे हैं, अब इस अक्षोभ का भी यहां क्या काम। तो ये थी कहानी द से देह दर्द और दिल की।